ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग मेरे साथ में एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं विश्वरूप दास हूँ, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं उनके शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी का मैं शिष्य हूँ और यहाँ का काम मैं संभालता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन अभी केवल इसी विषय में अपना काम करता हूँ। तो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कितना भी संपन्न होगा, एफ्लुएंट, लेकिन लास्ट स्टेज में वो एकदम असहाय हो जाता है। कितना भी कुछ भी साधन उसके पास में होगा, धन दौलत होगी, अधिकार होगा, पावर होगी, लोग बहुत संपर्क में होंगे, डॉक्टर लोग होंगे, लेकिन लास्ट स्टेज में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी काम में नहीं आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की। मैं और डॉक्टर साहब सुबह ही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि सब कुछ होते हुए भी अगर कोई सोचता है कि मेरा सहारा भगवान है तो वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबसे सब कुछ होने के बाद भी आदमी असहाय रहता है और भगवान ही उसके सहारा होते हैं। समय ऐसा खेल खेलता है कि समय के खेल में सारे सहारे टूट जाते हैं। एक ऐसा सुंदर गाना है, गजल है, गजल, वो कहते हैं कि सहारा लिया था जिस जिसका हमने, सहारा लिया था जिस जिसका हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे। भंवर मीन्स वर्लपूल। जिस जिसका हम सहारा लेते हैं वो सब समय के भंवर में डूब जाते हैं, कोई भी नहीं बचता है। और जो भगवान का सहारा लेता है वो सब सहारे डूबने पर भी क्या कहते हैं उसको, आश्वस्त रहता है, ही इज एश्योर्ड, उसको निश्चित रूप से सहारा मिलता है। इसलिए भक्तिवेदांत अस्पताल जो या हॉस्पिस नाम का जो व्यवस्था यहाँ पर खुला है, इसीलिए खुला है कि अंतिम समय में भगवान का सहारा मिले। बाकी दवाई तो हम देते ही हैं, दर्द की दवाई देते हैं, बहुत सारी दवाई देते हैं, कारण मरीजों को आराम मिले, सुकून मिले, शांति मिले, कष्ट कम हो, मन बहुत साफ रहे, भगवान का विचार करने के लिए मन अच्छा रहे, क्योंकि बहुत अधिक दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है तो भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। याद करना चाहते हैं लेकिन दर्द आपको याद करना नहीं देगा। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि दर्द में भगवान का ध्यान करना बहुत मुश्किल है। कोई परम संत होगा, परम हंस, तो ही दर्द में भगवान को याद कर सकता है। लेकिन आम आदमी हमारा जैसा जो होता है ना, वो दर्द में दर्द पहले मिटाने का कोशिश करेगा, बाद में भगवान का सोचेगा। तो दर्द मिटाना बहुत ज़रूरी है। और दुर्भाग्य से वही है कि कैसे भी बोलिए आप, जीवन के लास्ट स्टेज में बहुत दर्द होता है, शरीर से होता है, मन से होता है, रिश्तेदारों से होता है, बहुत प्रकार के दर्द होते हैं दुनिया में, सब प्रकार के दर्द होते हैं उस समय। तो उस समय मरीजों को सुकून देना बहुत आवश्यक है और ऐसी स्थिति को निर्माण करना जरूरी है जिसमें वो भगवान को याद करने में समर्थ हो, सफल हो जाए वो भगवान को याद करने में। क्योंकि भगवान को याद करने को अगर भूल जाएंगे हम, अब नहीं कर सकते समझो, असफल रहे उसमें, तो फिर क्या करना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, फिर दोबारा माता के गोद में आना है, माता के घर में प्रवेश करना है, फिर जन्म लेना है दर्द भरा, फिर बूढ़ा होना है, फिर बीमार होना है, फिर वापस एक बार मर जाना है, वही वापस चालू पुनश्च हरि ओम, फिर दोबारा वही चक्र जो है ना वो दोबारा चालू हो जाएगा, फिर वहीं पर भी सफल नहीं हुए तो दोबारा वापस आना है, फिर यही कुल्लू के बैल की तरह। आपको, आप तो गांव वाले जानते हैं कुल्लू का बैल कैसा होता है ना, उसको आंखों की पट्टी लगाते हैं उसको, हाँ उसको आँख को पट्टी भी लगाते हैं, आप लगाते हैं उसको आँख की पट्टी लगाते हैं उसको, उसको पता नहीं है वो कहाँ गोल गोल घूम रहा है, घूमता ही रहता है बस, उसका काम खेल घूमने रहे, उसको पता ही नहीं घूमने से क्या मिलेगा मालूम नहीं, क्यों घूम रहा हो पता नहीं लेकिन घूम रहा है बस। तो पट्टी क्या है, पट्टी माया है, और वो जो बैल है वो हमें माया की पट्टी लगाकर डोल रहे हैं, पता नहीं क्यों डोल रहे हैं लेकिन डोल जरूर रहे हैं, हाँ मंजिल है ही नहीं उसकी ना, मंजिल तो गोल गोल ही है सब तो ये गोल गोल मंजिल से निकलने के लिए हमको भगवान का सहारा बहुत जरूरी है, यही है और कुछ नहीं, यही समझ में आया ना आदमी के। तो पैसा होने पर भी गर्व नहीं होगा, पावर होने पर भी गर्व नहीं होगा, उनको मालूम है सब छूटने वाला है, क्या उस चीज पर गर्व कैसे करेंगे आप जो आपका आपके हाथ से छूटने ही वाला है, जो चीज, रुको रुको, जो चीज आपसे छूटने ही वाली है उस पर गर्व करने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप, मूर्ख बोलेंगे ना, क्योंकि वो जाने ही वाला तो उस पर गर्व क्यों करना है, जो साथ में रहेगी उस पर गर्व कर सकते हैं, जो ले जा सकते हैं उस पर गर्व कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है क्या हमारे साथ में क्या जाएगा, कोई आइडिया आपको, माता जी मेरा प्रश्न है आपको, हमारे साथ में क्या जाएगा, नहीं उत्तर सही नहीं है,
बुराई और भलाई, भलाई कर ले होता और बड़ी अच्छी, और जो बुरो कर्म करे मर गए राण बड़ा
बड़ा। देखो हाँ उसका उत्तर ऐसा है, उसका उत्तर यह है कि शरीर के स्तर पर क्या आपने कमाया है वो सब आपको यही छोड़ के जाना है, क्योंकि शरीर खत्म होगा तो शरीर के साथ जो भी है वो भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे पैसा कमाया है, परिवार है आपका, बहुत इज्जत कमाई है, बहुत बड़ा बंगला गाड़ी ऐसा कमाया हुआ है, ये सारा जो शरीर के सर पर कमाया है वो इधर ही रह जाएगा। और आत्मा के सर पर क्या कमाया आपने, भगवान का भजन, बिहारी जी का ध्यान, बिहारी जी की सेवा की आपने, बिहारी जी के संतों का दर्शन किया, उनके चरणों की सेवा किया, वो जो कहते हैं उसको आध्यात्मिक कहते हैं, उसको उसको पारमार्थिक भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल, जो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में जो अभी आपका अकाउंट है उसके अंदर जो भी है वो जहाँ आपकी आत्मा जाएगी उसके साथ जाएगा और उसके आगे उसका बढ़ोतरी हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बताते थे हमेशा कि हमारे स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम लोग इकट्ठा करेंगे वो आपके साथ जाएगा, और वही इकट्ठा करने के लिए जिंदगी है, क्योंकि दुनिया में हम लोग अगर बंगले 50 बंगले भी इकट्ठा करेंगे, हमारे वो थी ना जयललिता मुख्यमंत्री, क्या कौन से देश की थी वो, तमिलनाडु है ना, कहते कुछ 200-300 बंगले थे उसके भारत भर में, और कितने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी कुछ पता नहीं है, और कितनी गाड़ियां थी कहाँ कहाँ रखी हुई थी वो भी कुछ उसका हिसाब नहीं, हम लोग तो सोच सकते नहीं है इतना सारा था उसका, लेकिन जब मरी तो खाली हाथ गई और सब कुछ यहाँ पर छोड़ के गई, उसके ऊपर भी बहुत करप्शन हो गया, उसके बाद बहुत सारा भ्रष्टाचार उसके ऊपर हुआ, जो सामान रखे गए थे ना उसका, और उसकी एक असिस्टेंट थी उसका अंडरग्राउंड में गोदाम था, और उसके 1000 किलो सोने के और चांदी के गहने थे उसके अंदर, लेकिन 1000 किलो हो या 1 करोड़ किलो हो छोड़ना तो यही है, साथ में लेके जाना तो मुमकिन नहीं, ये सबको पता होना चाहिए। ये जिसको पता है वो धनवान भी रहेगा तो भी ओके है, वो गरीब रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा धन दौलत ये है ही नहीं, जिससे मैं गरीब हूँ या जिस चीज़ से मैं अमीर हूँ दोनों चीज़ मेरे संपत्ति का लक्षण ही नहीं है, मेरे संपत्ति का लक्षण तो वो है जो मेरी आत्मा के साथ है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये प्रयास यहाँ पर है कि आखिरी स्टेज में क्या होता है ना, मरीज बहुत कभी कभी हमारे पास मरीज आते हैं तो सारा जेब खाली कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं अभी क्या करूँ सर पैसा ही नहीं मेरे पास, तो हम लोग उसको बाद में आगे चलाते हैं, लेकिन उसको पूरा ध्यान में आता है जब सारे जेब खाली होती है तो एक ही जेब है भगवान की, वही हमको चलाती है। बाकी सारी जेब जो है कोई काम की नहीं है, सब व्यर्थ है। ना बेटा है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कुछ नहीं है। सब क्या कहते हैं, भूल भुलैया है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मरने तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वेट टिल लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ टू कम टू दिस रियलाइजेशन। तो पहले ही पता चल गया है वो भाग्यवान जीव है, उसको बुढ़ा होने की जरूरत नहीं, बीमार होने की जरूरत नहीं, मरने की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। जिसको संत का संग प्राप्त हुआ उसको बचपन की उम्र में भी पता चलेगा कि ये सच्चाई क्या है, और फिर उसी मार्ग पे चलेगा वो। तो हमारा भाग्य है कि हम वृंदावन में बैठे हैं। यहाँ पर तो कीड़ा भी जो है वो भाग्यवान है, पंछी भी भाग्यवान है। यहाँ पर जो मछली है, क्या मछली तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भी जीव यहाँ पर है, बंदर है, सुअर है, मोर है, इंसान है, कीड़ा मकोड़ा है, जो भी कोई है यहाँ पर, वो सब भाग्यवान है। क्योंकि यहाँ पर जो अंत प्राप्त करता है वो ठाकुर जी को ही मिलता है, ये निश्चित है। वो ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि धाम ही ऐसा है कि वो भेदभाव नहीं करता है, कोई मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई और, कोई काला गोरा, अमीर गरीब, कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसे आग कोई भेदभाव करता है क्या? आग में आप कुछ भी डिश डालो, सूखी डालो, गीली डालो, अच्छी डालो, बुरी डालो, जलने में डालो, न जलने में डालो, वो आग सबको बिना भेदभाव के जला देती है, सूखा हो या गीला हो। वैसे वृंदावन धाम आग की तरह है, संत लोग कहते हैं वृंदावन धाम आग की तरह है। इसमें जो भी आता है उसको शुद्ध ही होना है, और उसको भगवान की कृपा में ही जाना है। उसको भगवान की कृपा में ही भगवान उसको क्या कहते हैं, आवृत कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, पूरा घेर लेते हैं चारों तरफ से। जैसे माँ कैसे गोद में बच्चे को घेर लेती ना, वैसे ठाकुर जी यहाँ पर सबको घेर लेते हैं। यहाँ पर आना भी भाग्यवान है। हमारे आचार्य हुए हैं, उनका नाम है प्रबोधानंद जी सरस्वती महाराज, प्रबोधानंद जी, अभी 400-500 साल पहले वो संत यहाँ पर हुए हैं। वो पागल थे वृंदावन के लिए, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है वृंदावन महिमामृत। वो कहते हैं कि यहाँ पर भिखारी बनकर रहना भी मंजूर है मुझे, लेकिन यहाँ से बाहर जाना मुझे मंजूर नहीं है। सब कुछ छीन लो, मैं कोने में बैठकर एक कपड़ा बर्तन लूँगा और भिक्षा मांगूंगा, आने जाने वाले के पैर पकड़ूंगा, विनती करूंगा, दो सूखी रोटी मिलेगी तो खाऊंगा, लेकिन यही रहूंगा। हाँ, वृंदावन चबूतरे, मेरा मन जो है वहीं पर घूम रहा है बोलते हो। ऐसा धाम है ये धाम, जैसा धाम दुनिया में कोई नहीं है। सारे धाम आप इकट्ठा करेंगे ना तो भी इस धाम की तुलना नहीं कर सकते। और जितने भी धाम है ना, वो सारे धाम यहाँ पर आके आश्रय लेते हैं। आप रामेश्वर बोलो, आप सेतु बंद बोलो, आप आदि बद्री केदार बोलो, आप गया धाम बोलो, आपको क्या बोलना है बोलो, राधा कुंड, श्याम कुंड में और विमल कुंड में सारे 84,000 तीर्थ विराजमान हैं, सबने आश्रय लिया यहाँ पर। वो धाम जो है वो भी व्यक्ति है, वो भी सेवक है भगवान का। वो धाम सब लोग ने इधर आके निवास ग्रहण किया है, उसको निवास से ज्यादा आश्रय कहते हैं, शेल्टर। इसलिए राधाष्टमी के दिन यहाँ पर दूध की धार निकलती है, क्योंकि क्षीर सागर धाम भी उसमें विराजमान है। और वो राधाष्टमी के राधा कुंड के वो आविर्भाव होता है ना, बहुलाष्टमी, वो दिन वो प्रकट हो जाता है, पूरा राधा कुंड दूध से भर जाता है। कई जगह ऐसे वृंदावन में जहाँ दूध निकलता है, जहाँ जहाँ धाम इकट्ठा हुए सब प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ का दर्द भी ठीक है, यहाँ का खुशी भी ठीक है, यहाँ का दर्द भी ठीक है, यहाँ की गरीबी ठीक है, यहाँ की अमीरी भी ठीक है, यहाँ का सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी हैं। और जहाँ पर ठाकुर जी होते हैं वो ज़्यादा कष्ट होता है, आप मानते हैं इस बात को? कंस महाराज किधर थे? यही तो थे ना, वो पूरे बम्बई में थे, वो जहाँ कृष्ण थे वही कंस था। तो जहाँ कृष्ण थे वही माया होती है, लेकिन कृष्ण होने से क्या होता है, सब लोग आश्वस्त हो जाते हैं। इसलिए इतना सारा कष्ट होने के बाद भी किसी भी ब्रजवासी ने वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गए, बोले क्या बाप रे, ये कृष्ण के साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसके साथ रहने से रोज राक्षस का आतंक सहन करना पड़ता है, इसको मारने के लिए लोग आते हैं, हमको कष्ट होता है, इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं और कष्ट और तूफान हमारे पर आ रहे हैं। लेकिन ये सोचकर कभी भी एक भी ब्रजवासी बालक या बड़ा आदमी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं गया। देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या बोलेंगे, भाई बहुत कष्ट हो रहा है, चलो शिफ्ट हो जाओ, यहाँ से बाहर हो जाओ, बाहर कृष्ण ही रहेंगे तो कोई आएगा नहीं मारने के लिए, कृष्णा है इसलिए उसको मारने को आ रहे हैं, और हम उसके साथ में, हमको भी कष्ट होता है। लेकिन एक भी व्यक्ति कभी छोड़ के नहीं गया, क्योंकि कृष्ण के साथ होने में उनको इतना आनंद प्राप्त होता था कि जो कष्ट हो रहे वो बोलते ओके है, वो ओके चलेगा हमको, ऐसा बोलते थे। हमारा भी यही प्रयास है कि हम लोग सब कृष्ण से जुड़े रहें, इलाज करने वाले और इलाज लेने वाले दोनों कृष्ण से जुड़े रहे, यही यश है। और मैं कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा वो तो उनके हाथ में है, लेकिन इलाज करने वाले और इलाज लेने वाले दोनों ही कृष्ण के साथ रहे, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। ये तो वृंदावन में बना है अस्पताल, लेकिन मुंबई में भी बना हुआ है, उधर भी दिन रात भगवान का नाम गूंजते रहता है। अभी एक स्पीकर से आवाज आ रही है ना, ऐसे वहां पर 250 स्पीकर है, सब जगह पर भगवान का नाम हरे कृष्णा चलते रहता है। आप लिफ्ट में जाओ, आप इधर जाओ उधर जाओ, वार्ड में जाओ, ऑपरेशन थिएटर में जाओ, ऑपरेशन चल रहा है उधर भी भगवान ठाकुर जी का नाम का गायन चल रहा है, और डॉक्टर लोग भी भगवान का नाम सुनते सुनते ऑपरेशन करते हैं। बहुत जरूरी है, जिनको पता चला हुआ है वही लोग गर्व नहीं करते हैं, जिनको पता नहीं है वो गर्व करते हैं। डॉक्टर इतने पढ़े लिखे हैं गर्व नहीं करते, क्यों? वो जानते हैं कि सब भगवान का दिया हुआ है, उनकी सेवा में लगाना है, उसका इस्तेमाल उधर ही करना है। तो आप लोगों को विनती है कि जब तक आप वृंदावन धाम में हो आप निश्चिंत रहो, यहाँ का जीना भी बढ़िया है, यहाँ का मरना भी बढ़िया है, कोई अंतर नहीं इसके अंदर। यहाँ पर जहाँ ठाकुर जी की कृपा है वहाँ का जीवन भी श्रेष्ठ है, वहाँ का मृत्यु भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर जो चल जाता है वो सिद्ध ठाकुर जी के धाम में चला जाता है। ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि यहाँ पर जाने के समय पे सब लोग घेर लेते हैं उस व्यक्ति को और भगवान का नाम पुकारते हैं, उसको तुलसी देते हैं, उसको गंगा जल जमुना जल देते हैं, उसको चरणामृत देते हैं, उसको भगवान की माला पहनाते हैं, उसको ब्रज रज लगाते हैं सर पे सारे जर। कोई भगवान के दूतों के अलावा कोई नहीं आ सकता है उसके अंदर, ऐसी स्थिति बना देते हैं। तो यमदूत आता है उसके अंदर, अगर कोई स्थिति छाई नहीं है तो यमदूत आके ले जाता है, लेकिन जहाँ इतना घिरा हुआ आदमी है उधर कोई यमदूत या कोई और प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई सिपाही प्रवेश नहीं कर सकता है। आएगा तो ठाकुर स्वयं आएगा या तो उसका दूत आएगा और आपको लेके जाएगा। इसलिए अभी आपको भगवान का फिल्म दिखाने वाले हैं। क्यों दिखाने वाले हैं? क्योंकि ऐसा सब जगह लिखा हुआ है, संत लोग भी बताते हैं कि आदमी कितना भी दर्द में रहेगा ना, लेकिन ठाकुर की लीला को देखेगा या सुनेगा तो उस समय के लिए क्यों ना हो उसका दर्द मिट जाता है, वो दर्द के ऊपर चला जाता है, दर्द को उसको अनुभूति नहीं होती है। इसलिए ठाकुर जी की लीला में क्या कहते हैं, दिल लगाना बहुत जरूरी है। आप फिल्म देख सकते हो या कथा कान में सुन सकते हो, दोनों माध्यम से आप ठाकुर जी के संग में हो, और उस समय के लिए आप भूल जाओगे कि क्या आपको हो रहा है और क्या होने वाला है। तो दिन रात संत लोग बताते हैं दिन रात ठाकुर जी के स्मरण में लगे रहना चाहिए। बाकी जीवन अनित्य है, जीवन आज है और कल नहीं है, जीवन का क्या कहना है। आपको लग रहा है कि हमको कैंसर हो गया इसलिए हम अभी जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाएंगे तो गाड़ी हमारे ऊपर जाएगी तो हम भी जाएंगे, उसके लिए कैंसर होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे बात करते करते बाहर निकलते हैं, फिसल के जब पड़ते हैं, गाड़ी चलती है उसके ऊपर खत्म, और कुछ लोग चलते जाते हैं गाय लात मार देते हैं तो गाय से उड़ उड़ जाता है, सर जमीन पे टकराता है दीवार पे, उधर ही खत्म हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसको कैंसर है वही मरेगा, वो सब लोग कैसे भी मर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो आश्रय लिया है वो मरेगा या नहीं मरेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना श्रद्धा हमको होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, वही आदमी निडर हो सकता है, डर से परे जा सकता है जो ठाकुर जी का आश्रय लिया है। ठाकुर जी का आश्रय लेने का सबसे बड़ा लक्षण है कि भय से मुक्त हो जाता है, उसको भय है ही नहीं कुछ चीज का। जब भी चाहे मरने को तैयार है, जब चाहे जीने को भी तैयार है, आप बोलो क्या चाहिए आपको, इच्छा क्या है, हम रेडी हैं उसके लिए। और आम आदमी जो भगवान का सहारा नहीं लेता है वो डर भय से भरा रहता है, उसको डर रहता है ये जाएगा ये छूटेगा, बीवी छूटेगी, बच्चा छूटेगा, पैसा छूटेगा, जमीन छूटेगी, उसका बहुत डर रहता है उसको। लेकिन ठाकुर जी का जो चरणों का आश्रय लिया है जानता है ठाकुर जी का जो भी कुछ है सब मेरा हो जाएगा उसमें। The meek and the humble shall inherit the kingdom of God. जो भगवान का सेवक होता है वही जाकर भगवान के धाम का मालिक हो जाता है। ठाकुर जी भी कैसे है ना, बाप पिताजी कैसे होता है, इतना सारा करोड़ों कमाता है, अंत में क्या करता है, सब बच्चे के नाम पे लिख के जाते हैं। बच्चे को खाली क्या बोलना है, यस पापा, कुछ भी बोलेगा तो यस पापा बोलना है उसको खाली। पापा को क्या बोल रहा है वो पसंद नहीं आएगा तो भी यस पापा बोलता रहेगा, तो अंतिम में सही वो हस्ताक्षर करके जाएगा, सारा प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे करके जाएगा। हमारा ठाकुर भी ऐसा ही है, उसको आप यस पापा बोलते जाओगे तो अंत में उसका धाम भी आपका हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा। वैसे पिताजी का घर अपना घर होता है, वैसे ठाकुर जी का धाम भी हमारा धाम हो, हमारा घर हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग चिंतित ना हों, क्योंकि कैंसर नहीं भी हुआ तो भी मरना तो एक दिन है ही, कैंसर होने की जरूरत नहीं मरने के लिए, तो मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु हुआ उसका वापस जन्म होना निश्चित है। लेकिन हम लोग मरने के बाद दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहते, इसलिए हम ठाकुर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों को मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे, और बनी रहने का कोई शुभेच्छा करने की जरूरत नहीं कि ये बना रहे वो बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना हो जिंदा होगा ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कोई ठीक नहीं होता है आदमी जो जाना है वो जाता ही है। इसलिए हम ऐसा किसी को शुभेच्छा और प्रार्थना नहीं करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। सुखे दुखे बुले ना को बदने हरि नाम करो रे, सुख हो या दुख हो ठाकुर जी को नहीं भूलना है, उनके मुख से उनको याद करते रहना है, तो उसका जीवन सफल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।